राक्षसन रजिस्ट्रेशन किया। कृष्ण जी बैठे हैं और आज कृष्ण का जन्म दिवस है। यदि साक्षात रूप में हैं तो हम यदि नंद नाम का नाटकम यदि कीर्तन करें और राधा जी का कृपा कटाक्ष स्तोत्र यदि पार करें तो कृष्ण को किसमें प्रसन्नता होगी। नंद नाम का नाटकम से उनको प्रसन्नता नहीं होगी, उनको प्रसन्नता होगी श्रीमती राधिका जी के गुणगान से होगा। राधे जय जय माधव जैसे अथवा मुनिंद्रविंद वंदी के इत्यादि या और राधा जी का गुणगान करने से होगा। हरे कृष्ण में पहले ये राधा जी का गुणगान है, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर या नरोत्तम ठाकुर जी ने भी कहा है राधा नाम गाने भाई कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण का नाम आज गुणगान करने से राधा जी प्रसन्न होती हैं। इसलिए हम लोग अभी राधा जी का गुणगान करेंगे जिसको सुनकर के कृष्ण प्रसन्न होकर अपने आविर्भाव के दिन में जन्म के दिन में प्रचुर कृपा करें। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष धारिणी। तो राधा जी कृपा कटाक्ष करके यदि कृपा करेंगे तो क्या करेंगे, किस उद्देश्य से आप कह रहे हैं कि राधा जी कृपा करें, अपनी कृपा कटाक्ष अपने कृपा की कोर से हमारे ऊपर में करुणा के किस लिए क्या अभिलाषा। बहुत भक्तों की बहुत अभिलाषाएं होती हैं किंतु रूपानंद जो वैष्णव हैं उनकी एक अभिलाषा होती है। क्या होती है? उनके चरणों में हमारी गतिमती हो। आप कृपा करके राधा जी के चरणों की दासी बना दें। श्याम सुंदर शिखंड के खरच में रहा सुमरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा मिले स्व प्रिया चरण किंकरी गुरु। अच्छा, राधा जी के लिए भी यदि प्रार्थना हम करेंगे तो क्या करेंगे? हा देवी का तू भर गदगदयाजबाचा जाते निपत्त भूमि दंडवत उद्भटासी अच्छ प्रसाद मधुधस्य जनस्तिस्वा गांधर्वी के गौरव। उसमें भी किंतु राधा कृष्ण जुगल की सेवा होगी किंतु श्रीमती राधिका जी के अनुगत्य में होगी। इसलिए राधिका जी से यही मांगेंगे हम लोग कि राधा कृष्ण जुगल की चरणों की सेवा करने पर भी श्रीमती राधिका जी की ही हम रहेगा। चलो इसके बाद
अशोक
अतिमस्तरीय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाले सदाय कृष्णाय संस्कृतप्रदाय तदभक्ताय यं प्रजन्तमन्ते तमपेतकृष्ण जैपायनो गिरः पातर्यादिभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भीयो तं सर्वभूतविजनं मुनिमा तवैवास्मि अपने परमाराध्य समय की प्रज्ञान के कोटि कोटि बार दंडक प्रणती पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं। आज श्रीकृष्ण के आविर्भाव और जन्म का दिवस है। आज से 500 वर्ष पहले द्वापर के अंत में 5000 में सर्व कारणों के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मथुरा के कारागार में कंस कारागार में वसुदेव से औरत से और देवकी के गर्भ से आविर्भूत हुए थे कृष्णचंद्र जी। और उसी समय में गोकुल में मैया यशोदा जी के गर्भ से ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर जन्म लीला ग्रहण की थी, उनका जन्म हुआ था। मथुरा में आविर्भाव हुआ, जन्म नहीं हुआ, गोकुल में उनका जन्म हुआ। कोई भी लड़का 16 वर्ष की उम्र में सोने के आभूषणों से सुसज्जित होकर बड़े लंबे लंबे घुघराले के और शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लेकर नहीं जन्म लेता। इसलिए वो आविर्भूत हुए यहाँ पर, जन्म लीला नहीं हुई। और उसी समय में गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से पहले कृष्ण और 10-15 मिनट या आधा घंटा के बाद में योग माया जी वहां पर प्रकटित हुई, जन्म लिया। वहां पर उनकी नाड़ी कटी और वहां पर जात कर्म जात संस्कार इत्यादि ये सब वहीं पर हुआ। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कोई भी जात कर्म जो होता है जन्मने के समय उनका नाड़ी से और सब जो होता है यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर नहीं हुआ, गोकुल में ये सारी लीलाएं हुई। इसलिए यहाँ पर आविर्भाव, वहाँ पर जन्म लीला हुई, जमज हुए थे। क्योंकि अदृश्यत अनुज्ञा
विष्णु अनुज्ञा
विष्णु की अनुज्ञा, अनुज्ञा माने पीछे जन्म ग्रहण करने वाली, मथुरा में उनके पीछे कृष्ण के जन्म के बाद में आविर्भाव के बाद में कोई लड़की पैदा नहीं हुई और गोकुल में योग माया हुई, उसी को लेकर के वसुदेव जी जेल खाने में लौटे थे। भगवान की ऐसी लीला कि आज ही के दिन में जन्म होने की बात नहीं थी, दो महीने बाद में बेटे होने की जरूरत थी या बेटी, किंतु योग माया ने कंस को मूर्ख बनाने के लिए 8 महीने में ही वो जन्म ले लिए। उसको पता नहीं वो गिन रहा था 10 महीना, किंतु हो गया 8वें महीने में ही उनका जन्म हो गया। और जन्म से ही कंस चक्र बताते साथ में कह दिया कि हमको ले चलो वसुदेव जी को, हमको ले चलो गोकुल में। इस तरह से वर्षा होने लगी, ऐसी मूसलाधार वर्षा होने लगी रात में, आधी रात के समय में सब प्रहरी लोग सो गए। कंस भी उस समय में चोरी गया होगा या चिंतन कर रहा होगा और कोई भी घर से न निकल सके। और वसुदेव जी जमुना में तूफान बड़ी जोर से बाढ़ आ रही थी और जमुना को पार करने के लिए जब जाने लगे तो हाथ में सूप था, उसमें रखा था। जमुना जी कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर उठने लगी और वो कृष्ण को ऊपर उठाते उठाते जब यहाँ पर लाए तो देखा कृष्ण ये एक तो डूबी आई है। उसी समय में कृष्ण ने पीछे से अपने पैर लटका दिया, जमुना जी ने स्पर्श किया और बस जमुना जी नीचे उतर गए। और उनके सामने एक सीगाल चल रहा था, इधर पानी कम है तो बस थोड़े से पानी में जमुना जी को पार कर गया। और वहां जाकर जो वहां पर लेटे हुए कृष्ण जो थे उन्होंने इनको आकर्षण कर लिया, एक हो गए। और वहां पर लड़की थी, उस लड़की को उठा करके लेकर के आए। बहुत इसमें रहस्य है और हमारे गोस्वामी लोगों की टीकाएं हैं बहुत इस पर। तो आज गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से उनका प्रकट हुआ, जन्म लिए, यहाँ पर आदि हो। श्रीमद् भागवत में इन सब का बड़ा ही रोचक वर्णन है। विशेष करके श्रीमद् भागवत में हम लोग आज अभी श्रीमद् भागवत आरंभ करें, श्रीमद् भागवत में आना और उसमें नाम लिख देना, कृष्ण महाराज जी, माधव महाराज जी, वन महाराज जी और सब लोग बात करेंगे, उनका नाम लिख देना कि आज सारा दिन चलेगा, सारा दिन आज पाठ बंद नहीं होगा और शाम को जाकर आरती के पहले ये बंद होगा और आरती के बाद में हम लोग फिर यहाँ पर बैठेंगे और आधी रात तक प्रवचन और कीर्तन होता रहेगा और फिर यहाँ पर अभिषेक करके रात में आधी रात में सबको शरणामृत देंगे और पंजीरी देंगे हम लोग। और फिर कल सवेरे में हमारे भक्ति वेदांत एसी श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उन्हीं का जन्म दिवस है, तो जन्म दिवस हम लोग सवेरे कृष्ण का पहले करेंगे, नंदोत्सव होगा, ग्वाल बाल सब लेकर के आएंगे, दही हल्दी और वहां पर दही की इत्यादि होगी, सबको देंगे और बधाई का कीर्तन होगा, बहुत बहुत लोग सब आएंगे बधाई देने के लिए। और फिर उनके उत्सव में भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का उत्सव हम लोगों के गुरु बहन क्या नाम है वृंदावन विलासिनी ये उत्सव दे रही है उनके उनके लिए अपने गुरु जी के लिए। तो सवेरे 9 बजे के पहले ही उस समय जो कुछ होगा आप लोग प्रसाद पाएंगे। टुमारो टुडे होल डे श्रीमद् भागवतम अप्टिल आरती संध्या आरती एंड आफ्टर दैट वी विल सीट देयर एंड संकीर्तन एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा विल गो ऑन एंड इन द मिड नाइट और महा अभिषेक कृष्ण महाराज और आप सब लोग मिलकर के यहाँ पर सारी व्यवस्था करेंगे दूध घी और पंचामृत की और उनसे राधा कृष्ण का अभिषेक होगा और उसके बाद में फिर सबको चरणामृत पंजीरी दिया जाएगा और कल उस समय सभी लोग प्रसाद पाएंगे। दिन भर प्रसाद का चलेगा ब्रह्मचारियों से कहने की कोई जरूरत नहीं है। कब तो उन्होंने खूब परिश्रम किया इसके लिए हम प्रभु से और गुरु जी से उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको कृष्ण भक्ति हो। और यस्टरडे और ब्रह्मचारी कृष्णदास एंड ऑल और लड़कियां भी बहुत परिश्रम किया और नित्य इत्यादि के साथ में हमारा प्रोसेशन बहुत सुंदर रूप से निकला। ऐसा किसी का कभी भी नहीं होता इतने हजारों आदमी और इतने ठाट पाट से कृष्ण का संकीर्तन नगर संकीर्तन कहीं नहीं होता। यहाँ तक कि जन्म स्थान वाले भी करते हैं किंतु इतना नहीं वही तो आदमी नहीं आते हैं। तो उसके लिए विशेष विशेष बधाई भी है और साथ साथ में उनको भगवान श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनके आशांतिक भक्ति उन सब लोगों को हो। कर्मचारियों ने और हमारी बेटियों ने बहुत परिश्रम करके इतना बड़ा भारी आयोजन किया है कल देखेंगे ये कैसा आयोजन होगा। तो आज हम लोग संक्षेप आज भागवत होगा टुडे होल डे लॉन्ग और श्रीमद् भागवतम और इनका नाम लिस्ट कर देना क्रमशः ये करेंगे दोपहर में उनको दे देना प्रेम बिंग बल्लभ को 2 घंटा वो खूब करेंगे और इसी तरह से सारा दिन बंद नहीं होना चाहिए। हम संक्षेप में श्रीमद् भागवत से कुछ हम प्रवचन कर रहे हैं आज के दिन। आई थिंक दैट दे विल ट्रांसलेट अदरवाइज आई कैन डू सो मच। हमारी तो इच्छा थी कि मैं बहुत बोलूं किंतु तबीयत ठीक उतनी नहीं है इसलिए इतना नहीं बोल सकता। संक्षेप में कुछ मैं बतलाऊंगा और अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाए। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक जन्मादर्श जत अन्वयादि का सत्य अभिज्ञो सरार तेने ब्रह्म विराज आद कवये मुहि अंगीति जत सूर्य ते जो बार मृदम चक्र विनमयो विसर्गो अमृषा धामना मैन निरक्त पूर्वम सत्यम परम धीमन सत्यम परम धीमन परम सत्यम सत्यम परम धीमहि नहीं उसको लगा दो परम सत्यम धीमहि। ये गायत्री का भाष्य है। गायत्री और गायत्री का अर्थ है क्या जितने उपनिषद वेदांत इत्यादि जो हैं उन्हीं का ये विस्तार है तो उसमें धीम ही है। धीम ही माने परम वस्तु का वहां पर भी ध्यान है उसी को यहाँ पर विस्तृत करके बतला रहे हैं। सत्यम परम सत्यम परम सत्य कौन है वदन्ति तत्व विदः सत्यम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यम्। अंत में भगवान पर ब्रह्म भी हो सकता है, परम परमात्मा हो सकता है, परम भगवान नहीं, स्वयं भगवान ही होते हैं। इसलिए भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। और ये भगवान कौन है? एक एकांत कला पुंसा कृष्ण तू भगवान स्वयं, ये स्वयं ये भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। ये श्याम सुंदर कौन है? जय की जन निवास हो, देव की जन्म बाद हो, जग पर परिदत्त दुर्भिरक्षण न धर्मन श्रीचर ब्रजन सुस्मित श्री मुखे न ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन। जो सत्यम परम भी नहीं है ये कौन है? इसी के लिए इस श्लोक में बतला रहे हैं। क्या गोपी नाम क्या है? वर्धयन कामदेवम। गोपियों के हृदय में स्वच्छ निर्मल प्रेम इत्यादि को बढ़ाने वाले, वर्धन करने वाले, जब तक कृष्ण को उस रूप में ब्रजेंद्र नंदन गो नहीं देखेंगी गोपियां, उनका काम मन विशुद्ध प्रेम वर्तित नहीं हो सकता है। इसलिए ये यहाँ जो सत्यम परम धीमहि कहा गया, इसके लिए कहा गया जैसी जननिवास हो, देव की जन्म बाद हो, देवकी का जन्म ये बाद स्वरूप है, विवाह बाद विवाद का भी है। इसलिए किसके पुत्र हैं? जदुला के लिए जदुवंशी इत्यादि उनके परिकर हैं, ये भी बात है। सारा ये विवाद का है, किंतु बात किस में नहीं है उसी को बतला रहे हैं। जन्मिवास हो, देव की जन्म बाद हो, जदु पर परिषद सो दुर्भिरक्षण न धर्मन फिर चिरवर्ता नाम पर। ये है ये सत्यम परम धीमहि यशोदानंदन राधा कांत राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम जिन्होंने राज किया था, जो गोपियों के चरणों में अपने सिर को रस संवर्धन के लिए नीचे मस्तक नत कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था न पारे हम। वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर परम है, किसी से अन्वय और बचिर एक रूप में जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय जन्मादश्य जगत। और भी इसके बहुत से अर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी इत्यादि के हृदय में प्रेरणा की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के, और इसके कितने अर्थ बतलाए हैं इसका यत्ता नहीं। तो ये सत्यम परम धीमहि यदि कृष्ण को माना जाता है साधारण रूप में भी, तो अन्वय और व्यतिरेक रूप से जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है। अन्य रूप में किस शक्ति से किस जगत, सशस्त्र शक्ति से जीव और जड़ शक्ति से माई, किंतु व्यतिरेक क्या है? वो स्थिति हुई व्यतिरोक ये है, जीव है चेतन, चेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ नहीं है, कभी भी माया से उसका संपर्क संभव नहीं है, उसकी जगत का जड़ जगत से जीव का कोई संबंध संभव नहीं, वो तो चित है, किंतु संबंध देखा जा रहा है कि जड़ जगत में आकर और इस फूल शरीर को माइक शरीर को मैं मान रहा है और इन वस्तुओं को अपना मान रहा है। ये कैसे हुआ? कृष्ण की अघटन घटन पटयसी शक्ति योग माया है, कृष्ण की इच्छा से उन्होंने ऐसा किया कि जीव का इसमें कुछ आसक्ति हो उसी के कारण से, नहीं तो ये संभव पर नहीं हो सकता था। अन्वय और अन्वेत हुआ पहले और अब व्यतिरेक हुआ, ये जीव की शक्ति होने के कारण कभी भी माई जगत के साथ में उसका संपर्क संभव नहीं है, किंतु तभी होता है। ये कैसा होता है? कृष्ण की इच्छा से जोग माया और जोग माया की छाया शक्ति महामाया के द्वारा ये सब संभव हो जाता है। इस विषय में वो अभिज्ञ है कौन? श्री कृष्ण। जीव नहीं है, जीव जगत की सृष्टि का कारण नहीं हो सकता है। और स्थूल जो माया है प्रकृति, ये भी जगत की सृष्टि करने वाली नहीं हो सकती है। क्या है? माया भीते न प्रकृति, मेरी इच्छा से ये जगत सृष्टि करते है, इसलिए उसके द्वारा बतलाया कि न तो जी न तो ये माया जड़ माया कि जगत की सृष्टि इत्यादि ये सब नहीं कर सकती, इसके लिए संभव है। और इस विषय में आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में चतुर्श्लोकी भागवत संहिता वो ही प्रेरणा देते हैं, जिसमें इंद्र इत्यादि देवता लोग मोहित हो जाते हैं और तेजो बार मृदान विनिमयो जक्त त्रिसर्गो अमृषा, जिस प्रकार से तेज जल और पृथ्वी एक दूसरे में भान होता है, जैसे हवा होती है गर्म, गर्मी के दिनों में मृग मृगिका का उसमें भ्रम होता है, पानी है किंतु पानी उसमें नहीं जाता, फिर हम समझते हैं कि उसमें पानी है, उसके पीछे पीछे चलते हम मर जाते हैं। ये कांच, कांच में कभी कभी पानी का भ्रम होता है, कभी मिट्टी में जल का भ्रम होता है, कभी जल में मिट्टी का भ्रम होता है। उसी प्रकार से सत रज और तम ये त्रिगुणात्मक जो माया है उसमें भगवान अधिष्ठित होने के कारण कभी कभी सत्य की दृष्टि है किंतु सत्य नहीं है, तैकालिक सत्य नहीं है। और जिसमें ये माया नहीं है वो सत्यम परम धीम ही, वो कृष्ण परम सत्य है। किंतु जहां पर अर्थ करते हैं सत्यम परम धीम ही कृष्ण के लिए, तो उसके लिए क्या आएगा अर्थ? कृष्ण रसो वैसा कृष्ण, इसलिए आद्य एव एव परो रस, आद्य माने सिंगार रस, ये कृष्ण जन्म होता है कृष्ण से। दूसरा एक अर्थ और करेंगे राधा और कृष्ण दोनों से, और फिर तीसरा अर्थ करेंगे केवल राधिका जी से, राधिका जी ही रस का मूल कारण है। यदि राधिका जी न रहे तो कृष्ण अकेले रहते हुए भी कोई भी रस श्रृंगार इत्यादि कुछ भी नहीं हो सकता है। और अंत में ले आए हैं दोनों के मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु। और एक अर्थ लिया है भक्ति, इसको भी सत्यम परम अधीन रही, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जी गोस्वामी ने टीका में ये स्पष्ट रूप में देखा जाए। तो जहां पर ये अर्थ होगा ये कृष्ण अथवा राधा जी रस स्वरूप हैं और उन्हीं से ही आद्य रस श्रृंगार रस निकलता है, वहां पर अन्वय अव्यतिरेक का अर्थ क्या होगा? अन्वय माने मिलन, वितरेक माने धीरा, उसका ये अर्थ होगा। रस इत्यादि में मिलन और तत्पश्चात विप्रलम्भ नित्य लीलाओं में जहाँ नित्य लीलाएं हैं ब्रज की, उसमें मथुरा द्वारका जाने का कोई भी संपर्क नहीं है। मथुरा में और नहीं जाते, उनमें बेसी से बेसी यही होगा गोचारण के लिए जाते हैं अथवा वो कुछ प्रवास के लिए असुरों को मारने के लिए जब जाते हैं तो उस समय में इनका वियोग होता है। सबसे वियोग होता है मान में, एकत्र बैठे हुए हैं दोनों बातचीत नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि पहले इनका मान टूटे, पहले इनका मान टूटे, और दोनों जबरदस्ती मान किए हुए हैं और बोल नहीं रहे परस्पर। उसमें भी बहुत बहुत सी चीजें दी गई हैं, उज्ज्वल नील मणि में ही सब का प्रसंग। तो इस तरह से रस कहां से निष्पन्न होता है, श्रीमती राधिका जी से प्रसन्न होता है। अन्वय और व्यतिरेक रूप में मान इत्यादि को लिया व्यतिरेक, और मिलन में लिया अन्वय। और वहां पर आदि कवे जप मुह्यंती आदि कवे सुखदेव स्थान, उनके अंदर में प्रेरणा देकर के कृष्ण ने ही, राधा जी ने ही, दोनों ने मिलकर के प्रेरणा देकर के श्रीमद भागवत इत्यादि में जो वर्णित उनका रस है उसको ये वर्णित। और वहां पर तेजो बार निदान है ना, वहां पर ये होगा इन लीलाओं का चिंतन करने से, इन कथाओं का श्रवण करने से जो जीव हैं वो क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उनके लिए प्रलय हो जाता है। और यमुना जी चलने वाली है वो क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, स्थावर हो जाती हैं, और जो स्थावर पर्वत इत्यादि हैं वो द्रवित हो जाते हैं, पेड़ नीचे झुक जाते हैं, ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है किसके लिए, उस रस में स्नान करने से ये होता है तीनों के। ऐसे जो परम तत्व हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी विशेष करके इसमें बताते हैं ये कैसे वो रस रूप हैं और कैसे सत्यम परम धीमहि वो हैं। वो कृष्ण जी के लीला का अंत में उन्होंने वर्णन किया है सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक के द्वारा, जो अंत में हमने श्लोक बोला जय श्री जननिवासो में, कितने प्रकार के सुंदर अर्थ करके उनके जन्म लीला से लेकर द्वारका लीला इत्यादि का सब वर्णन करते हुए और उनका जयगान किया है। तो ये संक्षेप में हम बतला रहे हैं, किंतु वहां पर पढ़ने से मालूम होता है कि उस श्लोक में न जाने क्या क्या धरा पड़ा है। कृष्ण जी सबसे पहले प्रकटित होकर के पूतना का वध करते हैं। पूतना माने क्या, जो पवित्र नहीं है। क्या पवित्र नहीं है, अन्याभिलाष ज्ञान कर्म इत्यादि जो के द्वारा आच्छादित भक्ति काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपराध इत्यादि जितने हैं ये सब पूतना है। जब तक पूतना रहेगी भगवान का आविर्भाव नहीं होगा, इसलिए अपने भक्तों के हृदय में यदि ये सब है और अनुगत होता है गुरु चरणों का आश्रय लेता है तो कृष्ण उसके हृदय की सारी इन चीजों को दूर कर देते हैं। पूतना के बाद में तृणावर्त और शकटासुर और शकटासुर तृणावर्त, इनका मारने का भी यही उद्देश्य है। भक्तों के हृदय में यदि कपटता होती है, भक्ति तो करते हैं संपूर्ण रूप से, हम आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, अपने सुख की लालसा रहती है, भक्ति से हम दूसरी चीजों को चाहते हैं, हमारा धन जन परिवार प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़े, ये सब कपटता है। यदि एकांत रूप में शरणागत भक्त होता है तो कृष्ण उसके इस कपटता को भी दूर करते हैं। इसी तरह से कृष्ण की लीलाएं जितनी हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षामृत में इसका विवरण दिया है, ये किस प्रकार से इन असुरों का विध्वंस करते हैं। इसके बाद में बलदेव जी प्रभु जी आरंभ करते हैं हेनुकासुर का वध, फिर काली मर्दन इत्यादि है। जहां तक लीलाएं देखेंगे इस सब का वर्णन उन्होंने दिया है, ये कैसे भक्तों के अनर्थों को दूर करके शुद्ध भक्ति का प्रकाश भक्तों के हृदय में करते हैं। अभी हमको थोड़ा सा विश्राम करना होगा, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रवचन करेंगे, पहले भक्ति वेदांत सूक्ष्म महाराज, और इसके बाद में हमारे पन महाराज जी हैं या हमारे रक्षानंद जी हैं और सब लोग करेंगे। एक थोड़ा सा कीर्तन कर दीजिए, कीर्तन करके तब फिर यहाँ पर भागवत का ग्रंथ ले आओ और यहाँ पर रख दो और लिस्ट बना करके सभी लोग करेंगे।